समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। डिजिटल युग में ऑनलाइन गेमिंग ने मनोरंजन की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। आज मोबाइल फोन के जरिए भी लाखों लोग गेम्स खेल रहे हैं, कुछ मनोरंजन के लिए तो कुछ कमाई के उद्देश्य से। लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां भी सामने आई हैं, जैसे गेमिंग की लत, आर्थिक नुकसान और बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन संबंधी नियम 2026 अधिसूचित किए हैं, जो 1 मई से लागू होने जा रहे हैं। इनका मकसद इस तेजी से बढ़ते क्षेत्र को सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है दुग्गल जी।
धन्यवाद प्रियंका जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके कार्यक्रम पर आकर।
धन्यवाद। श्रोताओं, आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, हमारी फोन लाइंस खुली हैं। नंबर है 2331-0481 या 2371-7117। इसके अलावा 2371-7106 और 2331-4444। याद रखे, दिल्ली का कोड 011 डायल करना ना भूलें नंबर मिलाने से पहले। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो श्रोताओं, आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। पवन जी, सबसे पहले आपसे यही सवाल जानना चाहती हूँ कि सरल भाषा में बताएं कि ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार और विनियमन जो नियम है 2026, ये क्या है और क्या मकसद था इनका लाने का?
देखिए, भारतीय सरकार शुरू से वचनबद्ध है कि हम भारतवासियों को जो ऑनलाइन गेमिंग के दुष्प्रभावों से बचा सकें। इस संदर्भ में पिछले साल हम एक नया कानून लेकर आए थे और उस कानून के अंतर्गत केंद्रीय सरकार को पावर दी गई कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ला सकती हैं ताकि वो इस कानून के उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। उस संदर्भ में अब ये गेमिंग रूल्स आ गए हैं जो 1 मई 2026 से लागू होने वाले हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये एक प्रैग्मेटिक तरीके से एक नया सिस्टम स्थापित करते हैं जिसके माध्यम से ये जो ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने का प्रकरण है उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो गठित की गई है। ये एक डिजिटल बॉडी होगी, इसके चेयरमैन होंगे, कुछ मेंबर्स होंगे और उसका उद्देश्य यह रहे होगा कि वो विभिन्न प्रकार की गाइडेंस दे, मार्गदर्शन प्रदान करे कि कौन कौन सी गेम्स ऑनलाइन मनी गेम्स हैं, कौन कौन सी गेम्स ई स्पोर्ट्स हैं, किन गेम्स को बढ़ावा देना है और किन गेम्स को कानून का निषेध का शिकार बनाना है। साथ ही साथ ये रूल्स विभिन्न प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर्स की जिम्मेवारियों को परिभाषित करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इस लॉ को अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन की जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर होंगे वो होंगे ये कंपनियां, ये सर्विस प्रोवाइडर्स। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि भारत की जो जर्नी है वो टुवर्ड्स रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन मनी गेम्स, उस दिशा में एक बहुत अच्छा कदम रहेगा।
जी बिल्कुल। और सबसे पहले बात करते हैं हमारे श्रोता, पहले श्रोता जो जुड़े हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी।
हेलो, नमस्कार जी।
नमस्कार,
मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ
जी।
सर नमस्कार। सर, ये जो गेमिंग के ऊपर ऑनलाइन पे जो पाबंदी लगनी है, ये पूरी तरह से क्यों नहीं इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाती? गेम्स को गेम को चलने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि गेम चलाने वाले कोई दूसरा रास्ता खोज लेंगे, कुछ दूसरे तरीके से इस चीज को करेंगे। जैसे आपको आपको तो स्पेशल जानकारी ही होगी, पहले के समय पे 25-30 साल पहले एक सिंगल नंबर लॉटरी चला करती थी, उसमें कितने हजारों घर बर्बाद हुए, आपने देखा भी होगा, उनकी फोटो भी टीवी में आती थी कि गले में जो लॉटरी उनकी नहीं लगती थी, उनके गले में माला पहन के वो घूमते थे, पागल हो गए, पूरा घर बर्बाद हो गया। सवाल मेरा यही है कि इसको पूरी ऐसे बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए, इसको गेम को गेम के नाम पे इसको नहीं हमें चाहिए।
देखिए धर्मवीर जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। अगर आप चाहते हैं कि पूरे ऑनलाइन गेम्स को ही समाप्त कर पाएं, तो शायद ये संभव नहीं हो पाएगा। उसका कारण ये है कि इकोसिस्टम बहुत ज्यादा मैं कहता हूं वाइड स्प्रेड हो चुका है। दूसरी बात, अगर संविधान के हमारे प्रावधानों को देखें तो वो भी हम सब भारतवासियों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है। उसके अंतर्गत मौलिक अधिकार के अंदर धारा 21 आती है जो जीवन जीने का मौलिक अधिकार स्थापित करती है। अब जीवन जीने का मौलिक अधिकार के अंदर ये भी शामिल है कि अगर आप ऑनलाइन कोई ऐसी गेम खेलना चाहें जो गेम ऑफ स्किल हो तो वो भी आप खेल सकें। ठीक है, अगर ऑनलाइन गेम का एक ही मतलब है कि साहब ये जुआ है और ये लोगों को पतन की ओर ले जा रहा है तो ये गलत बात है। कारण ये और बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो गेम ऑफ स्किल्स होते हैं। कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ना एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया और उसमें उन्होंने कहा कि साहब भारत में जितनी भी ऑनलाइन गेम्स होती हैं उनको हम दो प्रकार की श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो होते हैं गेम ऑफ चांस और दूसरा होता है गेम ऑफ स्किल। गेम ऑफ चांस यानी कि वो गेम जब आप खेलते हैं तो उसमें आप तुक्के पर चांस पर चलते हैं, और जो गेम ऑफ स्किल होता है उसमें कहीं ना कहीं आपकी तैयारी, आपकी स्किल इन्वॉल्व होती है, तजुर्बा इन्वॉल्व होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप गेम ऑफ स्किल खेलते हैं तब वो लीगल है, लेकिन गेम ऑफ चांस अगर आप खेलते हैं तो वो जुआ है। और ये बुनियादी तौर पर जो सिद्धांत हैं आज तक लगातार रहे हैं, मुकम्मल रहे हैं, और इसी को मद्देनजर रखते अभी ये जो फिलहाल कानून आया है वो कहता है ऑनलाइन मनी गेम्स का हम प्रोहिबिशन कर रहे हैं। यानी कि आप ऑनलाइन गेम खेल करके मनी को ना तो गवा सकते हैं, ना कमा सकते हैं, ना कमाने की आकांक्षा रख सकते हैं, और अगर आप करेंगे तो एक दंडनीय अपराध होगा जिसमें 3 साल की सजा होगी, 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो कानून बहुत सख्त तरीके से चाह रहा है कि साहब जो भारतवासियों की फैमिलीज हैं उनकी जो जीवन है वो इस तरह के ऑनलाइन मनी गेम्स के साथ पूरी तरह बिखरना जाए
और लत ना पड़े लोगों को। दूसरे श्रोता जुड़े हैं हरिद्वार से, रवि जी आपसे अनुरोध है कि अपने रेडियो सेट की आवाज कम कर दें।
हाँ जी, नमस्कार मैम जी।
नमस्कार
जी, मैं महानुभव कवि जो विशेषज्ञ हैं उनको भी नमस्कार।
नमस्कार,
आपका सवाल क्या है?
हाँ, मैं रवि जवालिया गरवीरपुर हरिद्वार से मुखातिब हूँ आपकी सेवा में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सरकार नए नियम ला रही है इनका मतलब मकसद क्या है, और इस नियम को हम कैसे समझे, एक आम आदमी इस नियम को कैसे समझे, और जो अभी चड्डा जी ने बात उठाई थी दिल्ली से वो उसकी बात को भी मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ उनकी, कि वो भी बंद होना चाहिए क्योंकि इससे जो नया युवा वर्ग है वो थोड़ा इस गलत राह पर चलकर अपना भविष्य खराब कर सकता है। तो मैं इसमें विशेषज्ञ की राय जानना चाहता हूँ जी। धन्यवाद जी।
सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि अपने श्रोताओं को ये पता चले कि इनमें कौन कौन सी गेम्स आ रही हैं, किन पर प्रतिबंध है और किन पर नहीं है।
देखिए, कानून जो है ना वो बड़े ब्रॉड टर्म्स में परिभाषित करता है, ऑनलाइन मनी गेम्स को परिभाषित करता है, यानी कि ऐसा गेम जिसको खेलने में आपको पैसे की जरूरत हो, या जिसको जीतने के बाद आपको पैसा मिले, या पैसा मिलने की उम्मीद हो, वो तमाम सारी चीजों को ऑनलाइन मनी गेम्स की श्रेणी में विभाजित किया गया है।
इन पर प्रतिबंध है,
इन पर कंप्लीट प्रोहिबिशन है। आप ना तो खेल सकते हैं, ना एडवर्टाइजमेंट डला सकते हैं, ना लोगों को आकर्षित कर सकते हैं कि सही आप आइए ऑनलाइन मनी गेम खेलिए। लेकिन एक और जहां ये कदम उठाया है वहां दूसरी ओर केंद्रीय सरकार ने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है, वो ये कि भारत में ई स्पोर्ट्स को उन्होंने बढ़ावा देने के लिए बहुत जबरदस्त एक रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क बनाया है। ई स्पोर्ट्स यानी कि स्पोर्ट्स जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा किए जाते हैं। अब ई स्पोर्ट्स इतने ज्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं कि धीरे धीरे जितने भी मेजर गेम्स हैं, ओलंपिक गेम्स हैं और जो रीजनल गेम्स हैं उनमें भी ई स्पोर्ट्स का डिसिप्लिन आ गया है। तो ई स्पोर्ट्स को लेकर बहुत ही ज्यादा बुलिश है गवर्नमेंट और चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट करें। ई स्पोर्ट्स की खास बात ये होती है कि वो लत नहीं लगाते। दूसरी बात, वो ई स्पोर्ट्स आपको प्रतिस्पर्धा यानी कि कॉम्पिटिशन स्पिरिट को लेकर आप में एक नया जज्बा ला देते हैं, और तब आप में होता है कि साहब मुझे गेम जीतनी है, अपने लिए नहीं जीतनी, मुझे अपने राष्ट्र के लिए जीतनी है। तो आप कहीं ना कहीं राष्ट्र की छवि को आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। तो वो ई स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा प्रभावित तौर पर हम लोग इनकरेज कर रहे हैं। तो उद्देश्य बहुत क्लियर है कि अगर आपने पैसे गंवाने हैं ऑनलाइन गेम्स में तो कानून कहता है हम आपको गंवाने नहीं देंगे, क्योंकि अगर आपके पैसे गुम हो गए या चले गए, लुप्त हो गए, तो आप बर्बाद हो सकते हैं, आपके परिवार का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो सकता है। कानून उसी दिशा में आपको संरक्षित करने की दिशा में कदम उठा रहा है।
तो सोशल गेम्स भी हैं, ऑनलाइन सोशल गेम्स, तो उसमें क्या चीजें आती हैं?
देखिए, ऑनलाइन सोशल गेम्स में पैसा नहीं आता। मोटी मोटी बात समझ लीजिए, अगर किसी ऑनलाइन गेम में पैसे का इन्वॉल्वमेंट है तो कानून कहता है वो मैं प्रोहिबिट करता हूँ, निषेध करता हूँ। लेकिन अगर आप ऑनलाइन सोशल गेम खेलते हैं जिसमें आप और लोगों के साथ मिलकर आप इंटरेक्शन करते हैं, सोशल वैल्यूज को बढ़ाते हैं, उनको भी प्रोत्साहन दिया गया है इस कानून के तहत।
जी हाँ, और उन्होंने युवाओं से भी जुड़ा सवाल पूछा था कि युवाओं को जो लत लग जाती है तो उस तरह से उनके संरक्षण के लिए क्या प्रावधान है इस नियम में?
देखिए, यहाँ पर कानून का बड़ा लिमिटेड रोल होता है। कानून गारंटी नहीं कर सकता कि आपको लत नहीं लगेगी। कानून तो ये बोल सकता है कि साहब आप ये कदम उठाइए ताकि आपको लत ना लगे, लेकिन अगर उसके बाद भी आप पर लत लगती है तो कानून कानूनी परिस्थितियों को परिभाषित कर सकता है कि साहब अगर आपकी वजह से लत लगी तो आपको इस कानूनी कॉन्सिक्वेंस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली जो लत लगने वाली बात है ना, ये मेंटल थॉट प्रोसेस की बात है, एक मानसिकता की बात है और सामाजिक प्रॉब्लम है।
बिल्कुल, इसमें बहुत बड़ा रोल मुझे लगता है फैमिली का, समाज का, मतलब आपका जो पीयर ग्रुप है वो किस तरह से आपको समझाते हैं, आपके पेरेंट्स किस तरह से समझाते हैं। आपको समय देना पड़ेगा अपने बच्चों को ताकि वो इस जो लत में ना लगे।
लेकिन आज की प्रॉब्लम है, आजकल की जो नए माँ बाप हैं वो कहते हैं कि साहब बच्चों को एक कोने में छोड़ दो। हाँ। वो बेचारा पढ़ाई कर रहा है, ऑनलाइन है, क्या कर रहा है, उनको पता ही नहीं होता। पता लगता वो इतना ज्यादा इस गेमिंग के भवन में फंस जाता है कि उसमें से बाहर निकलना बच्चे के लिए मुश्किल होता है।
शायद इस नियम में कई चीजें ऐसी है कि पेरेंटल लॉक लग जाता है, आपसे बहुत चीजें पूछी जाती है ताकि बच्चे गलत राह में ना जाए। हरियाणा के करनाल से जुड़े हैं जय भगवान जी। हेलो,
नमस्कार मैडम।
नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि बच्चे ये मैच कल होता है, जब भी बहुत से घर वालों के माँ बाप में परेशानी हो जाती है कि बच्चा कहीं ये मैच में सट्टा तो नहीं लगा रहा है। सरकार ने क्या पूरी तरह से बैन कर दिया है या अभी खुला है?
देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है जय भगवान जी आपने। सरकार नहीं चाहती कि आप सट्टा लगाएं, इसलिए कोई प्रकार का व्यक्ति जो ऑनलाइन गेम पर सट्टा लगाता है वो इस कानून का उल्लंघन करता है, उसको 3 साल की सजा हो सकती है, 2 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। सरकार बहुत क्लियर है कि आपने पैसे कमाने ना, अपनी स्किल से कमाइए और गेम ऑफ स्किल को इस्तेमाल करिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। लेकिन अगर आप सट्टा लगाएंगे, अगर आप केवल गेम ऑफ चांस पर जाएंगे और उससे पैसा कमाएंगे तो वो भारत की जो पब्लिक पॉलिसी की नीति है उसके अनुसार नहीं है, भारतीय संविधान के जो प्रावधान हैं उनका उल्लंघन करता है। और यही कारणवश है कि भारतीय सरकार बहुत क्लियर है कि आपको किसी भी ऑनलाइन गेम में सट्टा लगाने की अनुमति कानून नहीं प्रदान करता।
तो सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है, आप भी नागरिक होने के नाते अपनी ओर से प्रयास कीजिए और एक समाज को सही दिशा दिखाने में सरकार का सहयोग करें। बिहार से जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी।
जी नमस्कार, मैं अमित उपाध्याय सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल था, जैसे कि 1 मई से अभी सरकार जो नियंत्रण कर रही है, इसमें ये हो सकता है कि सभी सरकार तो गेम पूरा बंद नहीं कर रही है, तो वैसे गेमों पर नियंत्रण रखे या मॉनिटरिंग करे ताकि जो बच्चे को हार्मफुल हो या चाहे उसे कुछ नुकसान हो उसको एक औसत एवरेज निकाल दे, उस एवरेज के तहत ये गेम से इस बच्चों को इतना नुकसान हो रहा है उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखे, तो ये भी एक रास्ता हो सकता है। जी,
और इस रास्ते को सरकार ने अमित जी पूरे जहन में रखा है। यही कारणवश है कि सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बहुत जबरदस्त प्रकार की जिम्मेवारियों से आप सुशोभित किया है, और अब तो ये ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया डिटरमिन करेगी कौन सी गेम है जो ऑनलाइन मनी गेम है या सोशल गेम है या ई गेम है, और ऑनलाइन मनी गेम्स को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। साथ ही साथ ये जो ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो कोशिश करेगी गेम्स के प्रभाव पर भी शोध करने के लिए, खासतौर पर उनका क्या इम्पैक्ट होता है मानसिकता पर, युवाओं की थॉट प्रोसेस पर, उनकी सोच विचार पर, और वो कहीं ना कहीं गाइडेंस या एडवाइजरीज भी जारी करेगी कि आपको सर्विस प्रोवाइडर होने के नाते क्या कदम उठाने चाहिए ताकि लत ना लग सके, परिवार को, माता पिता को, अपने भाई बहन को क्या क्या कदम उठाने हैं ताकि आपके परिवार का कोई सदस्य इस भवन में ना फंस सके।
जी, मध्य प्रदेश के छतरपुर से जुड़े हैं राशिद अहमद खान जी।
जी नमस्ते मैम।
नमस्कार,
आप मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से रशीद अहमद खान
जी।
मैं निवेदन ये कर रहा हूँ अपने विशेषज्ञ महोदय लोगों से कि क्या इन जो गेम्स वगैरह चल रहे हैं इनमें कुछ इस तरह का विभाजन हो सकता है क्या, ये बच्चों के लिए है बड़ों के लिए है, ताकि बड़ों के जो गेम है जो रिस्की है गेम ऑफ चांस है या गेम जो भी रिस्की वाले हैं वो बच्चे ना खेल पाए, ऐसा कुछ प्रावधान हो सकता है क्या कानून में?
देखिए कानून में ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वो अलग अलग गेम्स को कैटेगराइजेशन करें और जहां उसे लगता है कि गेम जो है खतरनाक है या गेम का दुष्प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव बच्चों पर पड़ सकता है तो वो स्पेसिफिकली फ्लैग करने की पावर उनके पास है, स्पेसिफिक डायरेक्शंस देने की पावर उनके पास है कि वो गाइडलाइंस दे सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स को कि आपको किन किन कंडीशंस में ही ये गेम को अवेलेबल करना है वैसे अवेलेबल नहीं करना। साथ ही साथ लोगों को भी ये पूरी हिदायत दी गई है कि जब अगर उन्हें लगता है कि कोई ऐसी गेम आ गई है मार्केट में जो उनके बच्चों को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रही है तो आप ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, वो आपके बात सुनेंगे और अप्रोप्रिएटली दिशा निर्देश करेंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी कहेगी साहब कल से सब काम बंद, कल से कोई गेम नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला, वो हर गेम को का विश्लेषण करेगी और कानून ने अलग अलग मुद्दों को नुकतों को परिभाषित किया है जिनके आधार पर डिटर्मिन किया जाएगा कि ये गेम चालू रखने योग्य है या नहीं है और अगर नहीं है तो दिशा निर्देश दिए जाएंगे ताकि इस प्रकार की गेम्स को उपलब्ध ना कराया जा सके युवाओं के लिए बच्चों के लिए।
और ये अथॉरिटी भी 1 मई से प्रभाव में आ रही है तो आप जैसा हो अपनी शिकायत है आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी जो भी आपकी शंका है उससे जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। उड़ीसा से जुड़े हैं दीप दास जी।
जी नमस्ते।
नमस्ते,
मेरा प्रश्न है ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की भूमिका क्या है और क्या सभी खेलों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है?
जी
बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा दीपदास जी आपने। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक जो कहते हैं ना कि स्कोप ऑफ वर्क है वो ये रूल्स डिफाइन करता है, ना केवल वहां चेयरपर्सन होंगे अलग अलग सदस्य होंगे उनके अलग अलग जो ड्यूटीज हैं उनको भी परिभाषित करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी तो यह है कि वो एक रस्ते में या दरबार पर आकर रोकथाम करने का प्रयास करते हैं, यानी कि कोई ऐसी गेम भारतीय इकोसिस्टम में ना आ सके जो भारतवासियों को उनके जीवन को उनकी मानसिकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करें, तो वो एक गेटकीपर का की भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ उन्हें मॉनिटरिंग की पावर दी गई है और हर प्रकार की गेम्स प्रोहिबिटेड बैंड नहीं है, केवल ऑनलाइन मनी गेम्स बैंड है। लेकिन अगर कोई ऐसी गेम आता है जो देखने में दूसरा लगता है लेकिन वास्तविक तौर पर ऑनलाइन मनी गेम होता है या उसका उद्देश्य उस दिशा में होता है तो इस अथॉरिटी को पावर दे दी गई है कि वो प्रोसिक्यूशन कर सकती है, 3 साल की सजा है, 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। तो बहुत ही आपने मतलब अनप्रेसिडेंटेड फाइन्स का प्रावधान किया है और साथ ही साथ मुझे लगता है काफी पब्लिक इंटरेक्शन रहेगा फेस का इस ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बिकॉज देखिए गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया जितने भी उपभोक्ता हैं यूजर्स हैं सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे इनपुट मांगेगी और जो लोगों की शिकायतें होंगी ग्रीवेंसेस होंगे या जो उनके सुझाव या पर्सपेक्टिव्स होंगे उनको मद्देनजर रखते हुए वो आने वाले समय में अपनी नई एडवाइजरीज नई गाइडलाइंस नए रूल्स प्रकाशित करेंगे।
तो ये भी जो पंजीकरण अगर कराना है किसी कंपनी को तो वो भी यही अथॉरिटी तय करेगी कि होना चाहिए कि नहीं,
यही एकमात्र अथॉरिटी है जहां पर पंजीकरण हो सकता है। फिलहाल अभी हर प्रकार के ई स्पोर्ट के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, बाकी और गेम्स या सोशल गेम्स के लिए भी फिलहाल पंजीकरण अनिवार्य नहीं है।
जी शिमला से जुड़े हैं राकेश जी।
जी नमस्कार।
नमस्कार
जी, सबसे मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आजकल जो एक गेम चल रही है ड्रिंक ड्रग गेम, तो इसमें महिलाएं जो है ऑनलाइन जो है ग्रुप में औरों को जोड़ती है और को वो अपना पैसा लगाती है, और दूसरी गेम जो 3 पत्ती वाली, क्या इन गेमों पर प्रतिबंध लग सकता है, ये मेरा सवाल है।
देखिए हर गेम को ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया या तो सुओमोटो खुद अपने आप से ही एग्जामिन कर सकती है या सर्विस प्रोवाइडर अपनी दरखास्त दे सकता है कि साहब इसे आप एग्जामिन करें, या केंद्रीय सरकार को पावर दी गई है कि वो नोटिफिकेशन दे सकती हैं ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, ये देखिए गेम ये सही है या नहीं है, कानून के दायरे में आती है नहीं, और काफी सारे पैरामीटर्स को इन रूल्स में शामिल किया गया है कि इस गेम का उद्देश्य क्या है, क्या इसका उद्देश्य लोगों से की जेबों से पैसा निकालना है, या क्या उनको लत में डालना है, या क्या अल्टीमेटली उन्हें एक मिथ्या वाली दुनिया में लेके जाना है जिसका ताल्लुक वर्तमान हकीकतों के साथ नहीं है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए, पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ये ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया फिर निर्णय लेगी कि साहब ये गेम है ये परमिसेबल है या नहीं है। जो परमिसेबल होगी उस प्रकार की गेम को उपलब्ध कराया जा सकता है, लेकिन अगर वो निर्णय लेते हैं कि साहब ये गेम परमिसेबल नहीं है, अधिकृत नहीं है, उसके बाद भी कोई सर्विस प्रोवाइडर इस गेम को अपने प्लेटफॉर्म पर खिलाता है तो उस पर भी 50 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल रुपए 2 साल की सजा भी हो सकती है।
बस इतना याद रखिए, जिसमें पैसा जुड़ा है तो वो सरकार ने पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है और आखिरी निर्णय जो होगा वो प्राधिकरण के पास ही होगा। बिहार से जुड़े हैं मोहन पासवान जी।
प्रणाम सर एंड मैडम।
प्रणाम, आपका सवाल क्या है?
मैं ये जानना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में अभिभावक को पता नहीं चलता कि मेरे बच्चे गेम में जीवन और पैसे बर्बाद कर रहे हैं। नए नियम में बचाव के क्या उपाय बताए गए हैं? दूसरा है सर, सरकार के पास साधन एवं संसाधन विज्ञान और तकनीकी हर दृष्टिकोण से पूर्ण है, फिर गलत गेम और गलत ठगी पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहे हैं सर?
बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछे हैं। कारण ये है कि वो मुद्दे उठाते हैं जो आज ज्वलंत हैं। आज पहली बात, हर प्रकार के गेम को सरकार क्यों नहीं बैन कर सकती? देखिए, हमारा जो ना इकोसिस्टम है गेमिंग का, इंटरनेट पर आधारित है। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क समझ लीजिए कि पूरी दुनिया भर के कंप्यूटरों को अगर एक साथ जोड़ लिया जाए तो उसे हम इंटरनेट बोलते हैं। तो इंटरनेट केवल भारतवर्ष में ही उपलब्ध नहीं है, ये एक ग्लोबल फिनोमिनन है और इंटरनेट ने इतिहास, जो भूगोल है उसको इतिहास बना रखा है। तो इस संदर्भ में कोई भी व्यक्ति भारत के बाहर कहीं पर भी बैठा हुआ इस प्रकार की गेम ऑफर कर सकता है। जो भारत में विद्यमान जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं या मोबाइल्स हैं वहां पर उपलब्ध हो सकती है। तो आप ये कहें कि साहब हर प्रकार की गेम्स को हम बैन कर पाएंगे, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी अभी संभव नहीं हो सकती, क्योंकि इंट्रिंसिक आर्किटेक्चर ऑफ द इंटरनेट वो इस तरह की चीज को अलाउ नहीं करता। दूसरी बात कि क्या सरकार कदम उठाए कि लत ही खत्म हो जाए, मुझे लगता है बहुत अच्छा सवाल है। सरकार इस दिशा में ये कानून लेकर आई है, उस दिशा में रूल्स लेकर आई है, और देखिए अगर आप वर्तमान कानून को देखें और कानूनों को देखें तो 2 करोड़ रुपए तक का जो फाइन है कभी किसी कानून में परिभाषित नहीं किया गया है। आज पहली बार इस कानून में बोला गया है कि साहब आप पर 2 करोड़ रुपए का फाइन लगेगा अगर आप इस तरह का गेम खिलाएंगे, और अगर आप खुद ऐसा गेम के बारे में एडवर्टाइजमेंट भी देंगे तभी 3 करोड़ रुपए का फाइन लग सकता है, 2 करोड़ रुपए का। तो बॉटम लाइन है कि सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन ये एक सामाजिक इशू है
जी।
आपका बच्चा गेम की लत में ना पड़े उसके लिए आपको सतर्क होना पड़ेगा। आप आंखें बंद करके अपने बच्चे पर ना तो विश्वास कर सकते हैं, ना ही आप निश्चिंत होकर रात को सो सकते हैं कि साहब बच्चा कमरे में काम कर रहा है तो पढ़ाई कर रहा होगा। उसको कहीं ना कहीं उसके साथ कम्युनिकेशन की जो लेवल्स हैं आपको पुनः से स्थापित करनी पड़ेगी, उसका विश्वास जीतना पड़ेगा। डंडे से चलेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जनरेशन डंडे की बात नहीं सुनती। जितना आप सख्ती से बात करेंगे उतना वो इंश्योर करेंगे कि साहब हम वो तमाम सारी चीजें करेंगे जो आप मना कर रहे हैं। तो उसको विश्वास के रास्ते पर लेकर चलिए, उन्हें दोस्त बनकर बात करिए कि साहब देखिए अपने भविष्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित ना करें, अंधकार में ना धकेलें, इस तरह की गेम्स का ना खेलें।
और ये शायद सिर्फ गेम्स के लिए नहीं, हर चीज की लत से बचाने के लिए यही इसका इलाज है कि अपने बच्चों के साथ दोस्त बने और उन किस दिशा में जा रहे हैं ये जानने का प्रयास करें एक दोस्त की तरह। व्हाट्सएप पे एक प्रश्न आया है मनोज पंसे जी का कि कैसे पता लगाएं कि कौन सा गेम बैन है या कौन सा नहीं।
मनोज जी, अगर आप गेम खेलने से पहले उस गेम के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लें या उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लें तो आपको आभास हो जाएगा गेम करना क्या चाहती है। क्या उसका उद्देश्य आपकी जेब से पैसा निकालना है? अगर तो हाँ, इस सवाल का जवाब हाँ है, तो प्लीज ये गेम परमिसेबल नहीं है, आप खेलिए भी ना, क्योंकि अगर आप खेलेंगे और कल आपके बरखिलाफ शिकायत होगी तो आपको भी जेल हो सकती है। तो आप अपने आप को बचाइए। और दूसरा, जो सर्विस प्रोवाइडर इस प्रकार के गेम को खिलाएगा जिसमें कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन की बात रहेगी, तो उस पर भी 3 साल की सजा और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है।
और ऑनलाइन गेमिंग के दौरान जो हम लोग अपना डेटा शेयर करते हैं, तो उससे भी बहुत मतलब असर पड़ सकता है हमारी निजता पर, प्राइवेसी पर।
मुझे लगता है कि हम सबको अपनी नींद से जगने की आवश्यकता है। भारतवर्ष में आज एक नई क्रांति चल रही है, मैं उसे बोलता हूँ भारत की उल्टी की क्रांति, द ग्रेट इंडियन वोमिटिंग रेवोल्यूशन। आज भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर हो, चाहे इंटरनेट या एआई पर हो। तो कृपया अपने जो सेंसिटिव पर्सनल डेटा है वो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर ना इस्तेमाल करिए, क्योंकि उनके टर्म्स एंड कंडीशंस प्राइवेसी पॉलिसी बोलती है कि साहब आप अपना डिटेल्स मत दीजिए, अगर आप देंगे तो हम उसको पर्सनल डेटा प्राइवेट डेटा मानेंगे, यानी कि उसके सीधा तात्पर्य होगा कि हम उसका इस्तेमाल भी करेंगे, तो आपकी जो निजता का अधिकार है उसका उल्लंघन होगा, डेटा प्राइवेसी का, पर्सनल प्राइवेसी दोनों का उल्लंघन होगा। तो कहते हैं ना कि सावधानी ज्यादा भली होती है, तो वो कहते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। कोशिश करें अपनी पर्सनल डेटा, अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इन ऑनलाइन गेम्स पर, प्लेटफॉर्म्स पर ना दें, क्योंकि अगर आप देंगे तो उनका दुरुपयोग होना सुनिश्चित है।
हिसार से जुड़े हैं राजेंद्र जी।
नमस्कार जी, प्रियंका जी, मैं और दुग्गल साहब को भी नमस्कार करना चाहता हूँ, और जो इतने मधुर आवाज में और दुग्गल साहब कार्यक्रम में आके बताते हैं इनके, बड़े हमें खुशी होते हैं, अच्छा लगता है। और मैं दुग्गल साहब से ये जानना चाहता था, क्या भविष्य में ये जो साइबर क्राइम है, जो वैज्ञानिक ऐसी खोज निकाल लेंगे जो हम निश्चित हो जाएंगे, और हमारे पास न एक दिन में रोज 3-4 कॉल फ्रॉड की आती है, हमें ये पता लग जाता है कि ये फ्रॉड कॉल है, तो क्या इससे हमें अभी अधिकार पूरा ऐसा हो जाए, निजता से ये संतुष्टि हो जाएगी? दुग्गल साहब को नमस्कार, बार बार मधुर आवाज में अच्छा
जी, धन्यवाद आपका सवाल, लेकिन फिर भी जानना चाहेंगे
जी। अनिल जी, सवाल आपका देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आंखें बंद करूंगा और मैं एक सपन की दुनिया में चले जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। साइबर क्राइम आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है और बना रहेगा, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मच्छ से हम कोशिश करेंगे या उम्मीद करें कि साइबर क्राइम लुप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए दायित्व तो हम पर होगा कि हम कहीं ना कहीं अपने आसपास एक सुरक्षा का जामा पहन लें, यानी कि सुरक्षा कवच पहन लें, अपने आप को सुरक्षित करें अपनी सावधानी से, सूझबूझ से, और आज की तारीख में कुछ हो या ना हो, दो चीजों को अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाइए। एक, शक्की हो जाइए, दूसरा कंजूस हो जाइए। शक्की, हर प्रकार की जानकारी को शक के दृष्टिकोण से देखें और उस पर तब तक विश्वास न करें जब तक उसकी पुष्टि या उसकी जो सत्यता है आप स्वयं वेरीफाई नहीं कर पाए हैं। और दूसरी, प्लीज आप इंश्योर करें कि आप जो हैं आज बहुत ज्यादा कंजूस हो जाएं अपने डेटा को लेकर। अपना डेटा केवल नीड टू नो बेसिस का शेयर पर शेयर करिए, अगर अनावश्यक तरीके से अपना डेटा हर एक को बांटते रहेंगे तो इसी डेटा का दुरुपयोग होगा
जी, और आप ही को उसका मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। आखिरी प्रश्न ले रहे हैं इंदौर से अनिल जी का। जी अनिल जी,
मैडम,
हाँ जी, अपना सवाल जल्दी से पूछे।
ये ऑनलाइन गेमिंग की जो शिक्षा है, ये बच्चों को कहाँ से प्राप्त होती है?
ऑनलाइन गेमिंग की जो तरीके हैं, जो शिक्षा है, वो कहाँ से उनको प्राप्त होते हैं?
भाई, बच्चों में तो बहुत जुगाड़ होता है और बच्चे तो आजकल खुराफात के उस्ताद होते हैं, तो आप जितने भी सोचेंगे भोले हैं ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें अपने पीयर ग्रुप से, इंटरनेट से, सोशल मीडिया से, और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नए नए तरीके, नए नए जुगाड़ मिलते हैं कि साहब आप किस तरह की कौन सी गेम खेल सकते हैं। बल्कि आज तो बच्चे इस तरह से जुगाड़ू हैं, वो जानबूझ के जुगाड़ू सवाल पूछते हैं जिसका नेगेटिव रैमिफिकेशन है। उन्हें पता है कि साहब ये चीज मैं करूंगा तो मैं औरों से थोड़ा भिन्न हो जाऊंगा, और कहीं ना कहीं वो अपने 5 सेकंड की जो फेम है ना, उसकी तलाश में रहते हैं, भूल जाते हैं कि भाई 5 सेकंड की फेम की तलाश में आप सारी जिंदगी आने वाले को नष्ट ना करें, उसे अंधकार में ना धकेलें। आज समय आ गया है, बच्चों को हमें सशक्त करना है, उन्हें जागरूक बनाना है, और हम सबको इसमें योगदान देना है ताकि वो इस तरह के जो प्रलोभन होते हैं ऑनलाइन गेम्स, मनी गेम्स को लेकर, गैम्बलिंग को लेकर, उस जाल में ना फंसे।
जी बिल्कुल, आप प्रलोभन में ना फंसे और अपने जो आपके बच्चे हैं उनके माँ बाप तो रहें लेकिन साथ में दोस्त की भूमिका भी निभाएं, तो ये बहुत चीजें बदल सकती हैं। दुग्गल जी, आप स्टूडियो में आए, हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
धन्यवाद।
अपने श्रोताओं का भी हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमें कॉल की। तो श्रोताओं, अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ज्वलंत मुद्दे के साथ। अब तक प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।